ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्य भद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम स्कंध सात अध्याय 14 श्लोक संख्या 12। जहि आदर्थे स्वान प्राणान हन्याद्वा पितरं गुरु कस्यां स्वस्थं स्त्रियां जहियाद् यस्तेन ह्यजितो जित। जहियाद्यदर्थे स्वान् प्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरु तस्यां स्वस्थं स्त्रियां जहियात् यस्तेन ह्यजितो जित। जहियाद्यदर्थे स्वान् प्राणान् जहियात् धन्याद्वा पितरं गुरु तस्यां स्वस्थं स्त्रियां जहियात् यस्तेन ह्यजितो जितः। जहियाद्यदर्थे स्वान् प्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरु तस्यां स्वस्थं स्त्रियां जहियात् यस्तेन ह्यजितो जितः। जहियाद्यदर्थे स्वान् प्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुम् तस्यां स्वस्थं स्त्रियां जहियात् यस्तेन ह्यजितो जितः। जहियाद्यदर्थे स्वान् प्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुम् तस्यां स्वस्थं स्त्रियां जहियात् यस्तेन ह्यजितो जितः। जहियाद्यदर्थे स्वान् प्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुम् तस्यां स्वस्थं स्त्रियां जहियात् यस्तेन ह्यजितो जितः।
राम रघुनाथ जी।
जहियाद्यदर्थे स्वान् प्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुम् तस्यां स्वस्थं स्त्रियां जहियात् यस्तेन ह्यजितो जितः। जहियाद्यदर्थे स्वान् प्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुम् तस्यां स्वस्थं स्त्रियां जहियात् यस्तेन वा जितो जितः।
और कोई
जहिया ददर्थे स्वान प्राणान हन्याद्वा पितरम गुरुम तस्याम स्वस्तम स्त्रियाम जहियाद यस्ते न यजितो जितः। पढ़िए अमी बिलास अमी रस्तो आगे आइए जहिया ददर्थे स्वान प्राणान हन्याद्वा पितरम गुरुम तस्याम स्वस्तम स्त्रियाम जहियाद यस्ते न यजितो जितः। पढ़िए जहिया ददर्थे स्वान प्राणान हन्याद्वा पितरम गुरुम तस्याम स्वस्तम स्त्रियाम जहियाद यस्ते न यजितो जितः। पढ़िए निम्बर्का प्रभु डेली क्लास में आते हैं निम्बर्का प्रभु। अच्छा धन्यवाद आपको। आप चेतन अवतार प्रभु पढ़िए। यस्ते न यजितो जितः। गौर किशोर पढ़ो क्या पढ़ो पढ़ने से अभ्यास होता है। अभ्यास सारिणी विद्या और बुद्धि कर्मानुसारिणी। आदमी अभ्यास करे तो धीरे 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 वो प्रवक्ता हो जाता है। एक एक श्लोक रोज अगर आवृत्ति करे व्यक्ति तो उससे अभ्यास होता है। अभ्यास करने से विद्या आती है। अभ्यास सारिणी विद्या। कोई विद्वान होकर नहीं जन्म लेता है। अभ्यास करने से पढ़ने से सुनने से धीरे धीरे बोलने लगता है। जैसे तोता को बार बार बुलवाने से वो बोलने लगता है। पक्षी भी बोलता है ना। तोता पक्षी जो है बोलने लगता है राम राम सीताराम। घर के लोगों का नाम भी बोलने लगता है सुनते सुनते। तो सुनने से पढ़ने से अभ्यास करने से विद्या जो है सरल हो जाती है। और नहीं बोलने से कठिन लगता है लेकिन आदमी बोलता रहे तो धीरे धीरे बोलने लगता है। शब्दार्थ जहिया छोड़ दें ये दर्थे जिसके लिए स्वान अपना प्राणान जीवन को हन्यात मार डाले वा अथवा पितरम पिता को गुरुम गुरु या शिक्षक को तस्याम उसमें स्वस्त्वम अधिकतम अधिकार स्वामित्व स्त्रियाम पत्नी में जहियात त्याग दें या जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तेना उसके द्वारा ही निसंदेह अजितः जो जीता नहीं जा सकता जीतः जीता गया। मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानता है कि वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को या अन्य को यथा अपने माता पिता या गुरु अथवा शिक्षक तक को मार डालता है। अतः यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर सकता है तो वह उन भगवान को जीत लेता है जो अजेय हैं। अब ऋतिक, मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानता है कि वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को या अन्यों को यथा अपने माता पिता या गुरु अथवा शिक्षक तक को मार डालता है। अतः यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति का प्रत्याग कर सकता है तो वह उन भगवान को जीत लेता है जो अजित हैं या अजय हैं। तात्पर्य श्री गौर निताय की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री राधारास बिहारी जी की। प्रत्येक पत्नी, प्रत्येक पति अपने पत्नी पर अत्यधिक आसक्त रहता है, अतः अपनी पत्नी से संबंध तोड़ पाना अत्यंत कठिन होता है। किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार से उसे त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर सकता है तो किसी के द्वारा भी न जीते जा सकने वाले भगवान उस भक्त के वश में आ जाते हैं। यदि भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाएं, तो फिर कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तो फिर मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों से स्नेह तोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण क्यों नहीं ले लेनी चाहिए। इसमें कौन सी भौतिक क्षति है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति तथा संन्यास का अर्थ है अपनी पत्नी से विरक्ति तथा कृष्ण में आसक्ति। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रत्येक पत्नी पति को अपने पत्नी पर अत्यधिक आसक्ति रहता है, अतः अपनी पत्नी से संबंध तोड़ पाना अत्यंत कठिन होता है। किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार से उसे त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर सकता है तो किसी के द्वारा भी न जीते जा सकने वाले भगवान उस भक्त के वश में आ जाते हैं। यदि भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाएं, तो फिर कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तो फिर मनुष्य को अपने पत्नी तथा बच्चों से स्नेह तोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण क्यों नहीं ले लेनी चाहिए। इसमें कौन सी भौतिक क्षति है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति, जबकि संन्यास का अर्थ है अपनी पत्नी से विरक्ति तथा कृष्ण से आसक्ति। बहुत समझ गए सब लोग। दो मुख्य बात इसमें बताई गई है। पहला है कि व्यक्ति अपने पत्नी पुत्र की आसक्ति को तोड़ करके अगर भगवान की भक्ति में आ जाता है तो भगवान जो अजित हैं, जिनको जीतना बड़ा कठिन है, भगवान का एक नाम है अजित या अजय, जिनको बड़े बड़े महारथी भी, बड़े बड़े योद्धा भी, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, रावण, बड़े बड़े हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष भी नहीं जीत पाए, लेकिन भगवान को आसानी से जीता जा सकता है। जो अजित अपि जीत। रूपा जी एक लेक्चर में कहते हैं यद्यपि भगवान अजित हैं, लेकिन भक्त लोग उनको जीत लेते हैं। भक्त ही जीतत्वम। जैसे माँ यशोदा ने कृष्ण को बंदी बना दिया, बांध दिया, उनको वश में कर लिया, जीत लिया, उसी तरह से गृहस्थ भक्त लोग भी भगवान को जीत सकते हैं। जीतने की विधि क्या है कि आसक्ति को त्याग करना। और संसार में सबसे बड़ी आसक्ति क्या है, स्त्री और धन में। भक्ति में दो ही चीज सबसे बड़ा बाधा है। जैसे सन्यास के इंटरव्यू में मायापुर में वेदांत चैतन्य प्रभु हमसे पूछे कि सबसे बड़ा बाधा क्या है, भक्ति में या सन्यास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो मैं कहा कि स्त्री और पैसा, कनक कामिनी, ये सबसे बड़ी बाधा है, स्त्री और पैसा। आदमी ये दो चीज में पराजित हो जाता है, स्त्री से और पैसे से। आदमी बहुत बलवान हो, बहुत बड़ा योद्धा हो, शेर हो, बहुत मैदान भी जीत कर आया हो, लेकिन स्त्री से पराजित हो जाता है, क्योंकि देवी देवी का बल ज्यादा है। एक भक्त कह रहे थे कि एक पति अपने पत्नी से कह रहा था कि मैं शेर हूँ, अपनी देवी जी से कहा कि मैं शेर हूँ, क्या समझती हो? तो पत्नी कहा कि आप शेर हैं लेकिन मैं सवा शेर हूँ। क्यों? कि शेर के ऊपर देवी की सवारी होती है, शेर पर भी कौन सवार होता है? शेर पर भी देवी सवार रहती है, आप क्या समझते हैं? शेर को भी कौन वश में किया है? तो देवी। तो ऐसे गृहस्थ जो आसक्ति को कम कर लेता है, पुत्र में, स्त्री में, धन में, जो आसक्ति इसको त्याग कर अगर भगवान में आसक्ति कर लेता है, तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं, भगवान उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, भगवान उसके सेवक हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे गृहस्थ जीवन का अर्थ है अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति को त्याग करके भगवान में आसक्ति को उत्पन्न करना, कृष्ण में आसक्ति बढ़ाना, क्योंकि एक साथ दो चीज नहीं होता है। अब या तो घर में या संसार में आसक्ति कर सकते हैं या भगवान में, या भगवान में आसक्ति नहीं है तो संसार में आसक्ति होती है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। जैसे एक साथ कहा जाए कि थोड़ा रोइए भी और हंसिए भी, रोना और हंसना एक साथ नहीं होता है, या तो आदमी रोएगा नहीं तो हंसेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। उसी तरह संसार में आसक्ति करना और भगवान में आसक्ति करना, दोनों में से एक ही कोई आदमी कर सकता है। एक को छोड़ना है तब दूसरे को पकड़ना है। जैसे बच्चा अगर कुछ खिलौना लिया है, वो खिलौने को अगर छोड़वाना है तो दूसरा कोई वस्तु देने पर तब छोड़ सकता है। जैसे कोई बच्चे मान लीजिए ब्लेड लिए हैं या चाकू लिए हैं, तो बच्चे जल्दी नहीं देते, अगर लेंगे तो रोने लगते हैं, तो उनको कोई खाने का चीज दे दीजिए या कोई दूसरा खिलौना दे दीजिए तो उसको छोड़ देते हैं। तो उसी तरह हमारी इंद्रियां जो है बाल स्वभाव की हैं। जो इंद्रियां हैं इसको कहा गया कि जड़ेन्द्रिय ताहे काल, तार मध्य जिह्वा यति लोभमय सुदूरमती, ताके जेता कठिन संसारे। इंद्रियों को जितना बड़ा कठिन है, और उसमें भी जिह्वा को बस में करना बड़ा कठिन है। तार मध्य जिह्वा यति, जिह्वा जो है बीच में है, जैसे कर्ण इंद्रियां हैं, चक्षुन्द्रियां हैं, घ्राणेन्द्रियां हैं, बीच में रसेन्द्रियां हैं, जीभ बहुत सुरक्षित है, 32 किवाड़ में बंद रहती है। जीभ जो है बहुत प्रबल है और अपने बहुत सुरक्षित अंदर रहती है। आंख में तो कभी कुछ आ जाता है, कान में भी, लेकिन जीभ बहुत सुरक्षित है। लेकिन इसको जीतना बड़ा कठिन है, जबकि बहुत कोमल है, इसमें कोई हड्डी भी नहीं है, बहुत लचीला है, जिधर उधर भी मुड़ जाती, लेकिन इसको बस में करना बड़ा कठिन है। तार मध्य जिह्वा यति लोभमय सुदूरमती, ये लोभमय है, हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए लालची है, और सुदूरमती बड़ा दुष्ट मती की है जिह्वा, इसलिए जिह्वा को बस में करना बड़ा कठिन। जो जिह्वा को बस में कर लेता है तो भगवान को या सारी इंद्रियों को जीत लेता है। जैसे जिह्वा है, उदर है, शिश्न है, ये समानांतर हैं। जीभ है, फिर उदर है, फिर जननेन्द्रिय है। लोग भोजपुरी में लोग कहते हैं कि जो जीभ को बस में कर लेता है और लिंग को, तो भगवान को जीत सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। जीभ को और लिंग को, मतलब जिह्वा को और जननेन्द्रिय को जो बस में कर लेता है वो भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए जो लोग जिह्वा के बस में रहते हैं, जिह्वारे लालच बस इत उत धाय, शिष्ण उदर पराय न कृष्ण नाही पाए, वो कृष्ण को कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो जिह्वा के बस में हो करके और जननेन्द्रिय को तुष्ट करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। जिह्वारे लालच बस इत उत धाय शिष्ण उदर पराय न, जो शिष्ण और उदर के परायण हो गए हैं वो कृष्ण परायण नहीं हो सकते हैं। तो इस आसक्ति को जो त्याग देता है वही भगवान को जीत सकता है। जो अजीत हैं, जो और किसी भी उपाय से नहीं जीते जा सकते हैं, अजित उनको भी जीता जा सकता है। कैसे कि जहिया ददर थे स्वान प्राणान हन्या वा पितरम गुरु, जिस आसक्ति के चलते लोग माता पिता गुरु तथा अपने निकष्ट प्रेम जनों को भी मार देते हैं। जो स्त्री की जो आसक्ति है, स्त्री में आदमी जब आसक्त हो जाता है तो स्त्री के लिए वो माता पिता को भी मार देता है, यहाँ तक कि गुरु को भी मार देता है। तस्याम स्वस्तम स्त्रियाम जहियाद यस्ते न यह जीतो जीता। लेकिन ऐसी आसक्ति को भी जो त्याग देता है, मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानता है कि वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को, अपने आप को भी हत्या कर लेता है। कभी कभी आदमी स्त्री के वियोग में अपने को ही जहर खाकर मार देता है। या प्रायः न्यूज में, टेलीविजन में हम लोग देखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका दोनों जहर खाकर मर गए, या प्रेमिका के लिए एक आदमी ने जहर खाकर मर गया। शादी के लिए लड़के लड़की तैयार होते हैं, मान लीजिए माता पिता कहते नहीं मत करो, इस लड़की से शादी मत करो, वो माता पिता को ही शूट कर देता है। या नहीं तो स्वयं को ही कोई मना करता है कि नहीं नहीं इस लड़की से शादी नहीं करना है, तो उसमें अवरोध अगर पैदा होता है तो वही मर जाता है। बहुत लड़के मर जाते हैं। तो स्त्री की ऐसी आसक्ति को जो त्याग देता है, गृहस्थ जीवन का अर्थ है अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है स्त्री में आसक्ति, फिर स्त्री से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं आत्मदारा, आत्म स्वासक्त चित, वित्रासुर लिखे हैं प्रार्थना में कि हे प्रभु मेरी आसक्ति अपने में या आत्मज में या दारा स्त्री में न हो, क्योंकि ये आसक्ति को तोड़ना बड़ा कठिन है। स्वासक्त चित नाथ भूयो, इसमें हमारी आसक्ति न हो। आत्मज आत्म आत्मजदार गे हैं, कैसा श्लोक है, यद उत्तम श्लोक जनेशु सख्य, मैं भूल रहा हूँ। तो हमारी मति आत्मे लगी रहे, स्त्री में या स्वजनों में या घर में, देहे गेहे आसक्ति न रहे। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, मानस देह गेह जे किछु मोर अर्पिनु तुया पदे नंद किशोर, ये सारी वस्तुओं से आसक्ति को निकाल कर भगवान में लगाना बड़ा कठिन है, साधारण नहीं है। बहुत लोग आसक्ति त्याग करके आते हैं फिर चले जाते हैं, घर से छोड़ करके जाते हैं वृंदावन में लेकिन फिर आ जाते हैं। एक बार राधाकुंद महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो है उसको अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो गया तो कहा कि अब मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो सुबह झगड़ा हुआ और घर से निकल गया कि अब तुम लोग का मुंह नहीं देखूंगा। जब झगड़ा होता है तो थोड़ा समय के लिए वैराग्य हो जाता है, जैसे बंदर बंदरी में भी झगड़ा होता है तो दोनों मुंह दूधर विमुख करके बैठ जाते हैं। लोग देखें बंदर बंदरी भी स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है ना, पशुओं में भी जोड़ा होता है, जैसे कबूतर मेल फीमेल का भी संबंध होता है, पशुओं में भी होता है संबंध जोड़ा होता है। तो बंदर प्राय वृंदावन में हम लोग देखे हैं, बंदर बंदरी में कोई झगड़ा हो गया तो दोनों कहते बिल्कुल अब वैराग्य हो गया, उल्टा मुंह कर लेते हैं विमुख, लेकिन कुछ समय बाद फिर आसक्ति आ जाती है। जैसे श्मशान में जाने पर वैराग्य हो जाता है कि संसार में कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं बनारस मणिकर्णिका घाट में जो लोग जाते हैं जलाने के लिए तो वहां बहुत हमेशा कोई न कोई जलता रहता है। मणिकर्णिका घाट में हम लोग देखे हैं, वहां दिन में हजारों लोग आते हैं जलाकर जाते हैं। तो जो लोग मणिकर्णिका घाट में या श्मशान में जाते हैं अपने माता पिता या दादा दादी या कोई भी स्वजनों को जलाने के लिए, तो देखते हैं तो वहां वैराग्य हो जाता है एक दिन सबको मरना है। एक दिन हमारी भी यही स्थिति है, वैराग्य हो जाता है लेकिन फिर घर में आने के बाद फिर वैराग्य हो जाता है, क्षणिक वैराग्य होता है। तो पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो पति कहा कि अब मैं तुम लोग का मुंह नहीं देखूंगा, अब वृंदावन जा रहा हूं, तो घर छोड़ करके वैराग्य मन में वैराग्य आया तो स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर जाकर के कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसका बच्चों का नाती पोतों का याद आने लगा, बच्चे हैं बच्चे के बच्चे हैं या लड़की के बच्चे हैं, तो धीरे 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 मन में जो वैराग्य था वो शाम होते होते अस्त हो गया, जैसे सूर्यास्त होते होते उसका वैराग्य का सूरज भी अस्त हो गया, फिर घर आ गया, शाम तक घर आया। तो अब बेचारा अब क्या कहे, कोई न बहाना चाहिए, तो कहा कि तुम लोगों का मुंह देखकर नहीं आया हूं, ये नाती पोते हैं इनका मुंह देखकर मुझे आना पड़ा। तो ऐसा वैराग्य जो है जो क्षणिक वैराग्य है या दिन भर के लिए वैराग्य है, ऐसे वैराग्य से जो है भगवान नहीं मिलते हैं, दृढ़ वैराग्य कि नहीं मुझे भगवान से प्रेम करना है। जब कोई छोड़ देता है घर को पत्नी को बच्चों को और छोड़ करके बाकी जीवन पर्यंत भगवान के भक्ति में अपने को लगा देता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। ऐसे संसार में कई उदाहरण है शास्त्रों में कि जिन लोगों ने अपनी स्त्री को छोड़ करके घर परिवार को छोड़ करके, जैसे राजर्षि भरत जुवावस्था में पृथ्वी के सम्राट थे, ससागरा पृथ्वी के सम्राट थे, छोड़ करके जवानी में जंगल में गए, पुलहाश्रम गंडकी नदी के तट पर पुलहाश्रम में आश्रम बनाकर भजन कर रहे थे, जबकि जुवावस्था में पत्नी को बच्चों को साम्राज्य को त्याग करना बड़ा कठिन है, लेकिन छोड़ दिए। और छोड़ करके कैसे छोड़ दिए कि भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मलवत, जैसे कोई मल त्याग करने के बाद उसके प्रति आसक्ति नहीं रहता है, मल त्याग करने के बाद उसको अच्छा अनुभव होता है, तो मलवत संसार को त्याग करके भजन करने के लिए गए। ऐसी आसक्ति को त्याग करके भगवान में आसक्ति अगर कोई कर लेता है तो उसका भक्ति का मार्ग जो है सरल हो जाता है। जब बिलमंगल दास ठाकुर, कल श्री माधव प्रभु बता रहे थे, बिलमंगल जो है बहुत आसक्त थे, एक वेश्या में आसक्त थे, चिंतामणि। चिंतामणि के प्रति इतनी आसक्ति की एक दिन उनके पिता का श्राद्ध था। पिता के श्राद्ध में घर आए थे, पिता के श्राद्ध का बहुत कुछ अनुष्ठान बाकी ही था, लेकिन शाम होते होते भाग आए। चिंतामणि के पास जब आए बिलमंगल, तो चिंतामणि जानती थी कि इसके पिता का श्राद्ध था, लेकिन श्राद्ध में भाग नहीं लेकर भाग गया। श्राद्ध में भाग लेना चाहिए, लेकिन भाग कर आ गया। भाग नहीं लिया, भाग गया। पिता का श्राद्ध है, बहुत सारे मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, बहुत सारा पुत्र का कर्तव्य होता है, पिता के लिए पिंड तर्पण करना। पुत्रायते इति पुत्र, जो पिता को पु नामक नर्क से उधार कर देता है वो पुत्र है। पुत्रायते, पु और त्र दो शब्द है, पु नामक एक नरक होता है, तो उसे जो अपने पिता को उधार कर देता है वो पुत्र है। तो चिंतामणि भले पतित थी, लेकिन उसको इतना ज्ञान था कि पिता के लिए पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। जब बिलमंगल अपने पिता का श्राद्ध संपन्न बिना किए आए, तो चिंतामणि ने उनको बहुत मर्माहत, अपने बातों से मर्माहत कर दिया, कहा कि आपको धिकार है, जो पिता माता पिता ने आपको ये देह दिया है, उनके पिता के श्राद्ध में भी तुम नहीं रुका, भाग आया। वो भी रात्रि में भागते भागते आए थे, श्री राधारास बिहारी की, कई कोसों दूर भागते भागते, बरसात में नदी को पार करके। ऐसे कथाकार लोग कहते हैं कि नदी में एक शव बह रहा था, उसको लकड़ी समझकर सहारा लेकर आए थे। और रात हो गई थी, जब चिंतामणि के पास आए तो दरवाजे बंद थे, तो एक बड़ा अजगर सर्प जो है से लटक रहा था, उसको रस्सी समझ करके उसी को पकड़कर चले गए थे। क्योंकि आदमी सांसारिक कामनाओं से अंधा हो जाता है, कामांध है, जो भौतिक आसक्ति है व्यक्ति को अंधा कर देती है। उनको यह भान नहीं हुआ कि ये सर्प है कि रस्सी है। जैसे नीति शास्त्र में कहा गया कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, उल्लू को सूरज में के प्रकाश में भी दिखाई नहीं देता है, और कौवे को रात्रि में नहीं दिखाई देती, कौवे को रात में नहीं दिखाई देता है, और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो कामनाओं से जो आसक्त है, अनेक कामनाओं से जो ग्रस्त है, उसको दिन और रात दोनों में नहीं दिखाई देता है। जो व्यक्ति कामनाओं से अंधा हो गया, उसको दिन रात दोनों बराबर है। तो बिलमंगल को यह भान नहीं हो रहा था नदी पार किए कि यह लकड़ी है या मुर्दा है, या घर में आए तो ये भी नहीं भान हुआ कि रस्सी है या सर्प है। जैसे एक बार राघवेंद्र महाराज लेक्चर में बता रहे थे कि एक व्यक्ति ध्यान में बैठा था। लोग ध्यान करते हैं जब के समय अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, एक जोगी जो है ध्यान में बैठा था, और एक प्रेमिका जो है अपने प्रेमी से मिलने के लिए भाग, समय निर्धारित था इतना समय, तो विलम्ब हो रहा था, तो स्त्री अपने प्रेमी से मिलने के लिए भागते हुए जा रही थी। इतना प्रेमी के भावनाओं में वो डूबी थी कि सामने जो ध्यान करने के लिए जो जोगी बैठे थे उनके ऊपर चढ़कर भाग गई। तो जोगी ने कहा कि कैसी स्त्री है, अंधी हो गई है क्या, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसको भान हुआ कि अरे मैं तो जोगी के सिर पर ही पैर रख करके चली। कभी कभी आदमी होता है ना किसी के ऊपर ही चढ़कर चला जाता है। तो महात्मा या जोगी जो भी होंगे लगे गाली देने की तुम अंधी हो, तो ध्यान नहीं है। तो स्त्री ने कहा कि वास्तव में मुझे ध्यान नहीं था, मैं तो अपने प्रेमी के ध्यान में उन्मत्त थी। या आपका ध्यान कैसा है? आपका आपसे ज्यादा तो मेरा ध्यान अच्छा है कि मैं अपने प्रेमी के ध्यान में इतने उन्मत्त थी कि मुझे मालूम नहीं पड़ा कि यहाँ कोई बैठा है। आपका ध्यान मतलब कैसा है कि आप भगवान में जब कोई ध्यान कर ले तो उसको भी भान नहीं होना चाहिए कि कौन आया कौन गया। तो उसने कहा कि आपका ध्यान कैसा है, आपसे तो ज्यादा ध्यान मेरा अच्छा है कि मेरा ध्यान ऐसा कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि आपके ऊपर मैं जा रही हूँ। तो बिलमंगल को चिंतामणि ने कहा कि ऐसी कथाएं लोग तुलसीदास के विषय में भी कहते हैं। बिलमंगल दास के जैसे जो घटना घटी थी वैसे तुलसीदास के बारे में भी इस तरह की घटनाएं हैं। तुलसीदास की पत्नी भी एक बार घर से चली गई थी, तो तुलसीदास कहीं गए थे, शाम को आए तो देखे कि कोई घर में नहीं है, पत्नी नहीं है, तो पता चला कि वो अपने मायके चली गई। तो तुलसीदास जी ने स्त्री के आसक्ति वो भी ससुराल में चल दिए। रात में पता चला था तो चलते चलते रात हो गई। रात्रि में गए तो उनकी पत्नी सो रही थी, तो देखकर बहुत आश्चर्य हो गई कि आप कैसे आ गए रात्रि में। तो उनकी पत्नी ने उनको बहुत डांटा, कभी कभी स्त्रियां ही गुरु बन जाती हैं। जैसे बिलमंगल की गुरु जो है चिंतामणि हो गई, उन्होंने लिखा है कृष्ण करनामृत में, उसकी वंदना किए हैं। बिलमंगल ठाकुर पहले चिंतामणि की वंदना किए हैं, उसको शिक्षा गुरु माने, बाद में अपने गुरु सोम गुरु थे ना, सोम ऐसे कुछ, उनको फिर वंदना किए। तो स्त्री से वैराग्य हुआ उनको, तुलसीदास को। उनकी स्त्री ने कहा कि ऐसी आसक्ति अगर तुम भगवान में कर लेते तो जो भव बंधन है, जो भव का भय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो टूट जाती। उनकी पत्नी ने कहा कि अस्थि चर्म में देह में जामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्रीराम में होती न भव भीत। ऐसी है ना, अस्थि चर्म में, ये देह क्या है, अस्थि चर्म है, हड्डी है, मांस है, मज्जा है, खून है, मल है, मूत्र है, कफ है, वात है, पित्त है। क्योंकि इस शरीर में जो आसक्ति आप रखते हो, अगर यही आसक्ति भगवान श्री राम में अगर तुम्हारी हो जाए तो भव का जो भय है, भव भय दूर हो जाएगा। अस्थि चर्म में देह में जामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में, अगर यही आसक्ति भगवान में तुम लगा लोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो अनादिकाल से जीव भव बंधन में गिरा है वो दूर हो जाएगा। तुलसीदास का ज्ञान का कपाट खुल गया। कभी ज्ञान किसी से भी हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी आसक्ति होती है, वैरागी को भी आसक्ति हो जाता है, बड़े बड़े त्यागी भी आसक्त हो जाते हैं आश्रम में या पद में, कोई महामंडलेश्वर बनने के लिए, कोई जगत गुरु बनने के लिए उसमें आसक्ति हो। आसक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, मंदिर में आने के बाद भी आसक्ति हो जाती है, अच्छा रूम के लिए, अच्छा चेयर के लिए, अच्छा ऑफिस लेने के लिए, अच्छा पद प्राप्त करने के लिए आदमी सब छोड़कर उसी में नौ छौ करते रहता है कि हमारा कुर्सी न चला जाए हमारा ये ऑफिस न चला जाए, ये भी आ सकती है ऐसा नहीं कि हम लोग मंदिर में आ गए तो बिल्कुल आ सकती रही तो नहीं, कभी कभी मंदिर में आने पर आ सकती और बढ़ जाती है कभी कभी प्रोग्राम के लिए आ सकती हो जाती, कहाँ प्रोग्राम है, कहाँ दक्षिणा मिलने वाला है, उसमें भागते रहते हैं भक्त लोग। वृंदावन बरसाने में हम लोग देखते हैं कि भंडारा के लिए दक्षिणा के लोग भागते रहते हैं ये भी आसक्ति है। तो जो आसक्ति का त्याग कर देता है तो भगवान उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, भगवान उसके बस में हो जाते हैं। मुख्य यही चीज है कि संसार से आसक्ति को त्याग करके भगवान में आसक्ति जो कर लेता है तो भगवान को जीत लेता है। अजित अपि जीतोपि, अजित को भी वो जीत लेता है। तो यहाँ गृहस्थ के लिए कहा गया है कि मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानता है कि यह हमारी है, पत्नी को ही सर्वस्व मानता है, कभी कभी उसके लिए स्वयं को या माता पिता या गुरुजनों को भी मार देता है। अतः यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है तो वह उन भगवान को जीत लेता है। बहुत सुंदर चीज है, जो स्त्री के प्रति आसक्ति को छोड़ करके वही आसक्ति भगवान में कर लेता है तो भगवान उसके बस में हो जाते हैं, भगवान को जीत लेता है। ऐसे कहा गया कि तुलसीदास जी एक चौपाई लिखे हैं कि नाज विवश नर सकल गोसाई आ नाचई नट मरकट की नाई। स्त्रियां पूरे संसार को अपने बस में करके रखी हैं, नाज विवश नर सकल गोसाई, सारे लोग स्त्री के बस में हैं, और नाचई नट मरकट की नाई। नट का जो मरकट होता है, नट भी रखता है ना बंदर को नचाने के लिए, गांव में बंदर नचाने वाले भालू नचाने वाले आते हैं, तो नट का जो मरकट होता है, मदारी का जो बंदर होता है उसको जैसे नचाता है वैसे नाचता है, और नहीं नाचता है तो डंडा भी मारता है हम लोग देखे हैं बंदर का नाच, तो नचाने वाला जो नट होता है वो बंदर को कहता है कि नाचो, टोपी पहनो या चश्मा लगा लो। कभी कभी बंदर टोपी लगाकर चश्मा लगा करके स्नो पाउडर लगाकर देखता है आप लोग देखे हैं कि हम लोग देखे हैं, अब कुछ भूल हुआ तो जो नट है उसको मारता है, तो वो नट जो है बंदर को जैसे वैसे नचाते रहता है। उसी तरह जो लोग घर गृहस्थी स्त्री में विशेष करके जो लोग बिल्कुल आसक्त हैं तो स्त्री के इशारे से नाचते रहते हैं, स्त्री उनको नचाती रहती है। जो आसक्त हैं उनके लिए, स्त्री में आसक्त व्यक्ति जो है स्त्री के इशारे पर नाचते रहता है, नाचे नट मरकट की नाई। जो इस आसक्ति को त्याग देता है वही सबसे बड़ा विजयी है, वही सबसे बड़ा योद्धा है। तो बिलमंगल ठाकुर चिंतामणि ने उनको जब कहा कि तुम कितना धोखाबाज हो, कितना आसक्त हो मुझ में, तुम्हें तो यह आसक्ति अपने पिता के प्रति होना चाहिए, भगवान के प्रति होना चाहिए, माता पिता गुरु और भगवान ये संसार में सबसे पूजनीय है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव माने भगवान श्री कृष्ण, द्विज माने भक्त, गुरु प्राज्ञ ये हमारे लिए सम्माननीय होते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, भगवान के प्रति आसक्ति होना या माता पिता के सेवा के प्रति गुरु के प्रति ये आसक्ति जो है जीते हैं। तो बिलमंगल को वैराग्य हो गया, चिंतामणि को प्रणाम करके कहे कि आज मुझे कोई गुरु मिल गया है। जिस व्यक्ति से वैराग्य हो समझी वो गुरु है। जिस व्यक्ति के वाक्य से अगर हमारी आसक्ति कम हो जाए तो समझिए कि वो गुरु है। बिलमंगल के जीवन में आज चिंतामणि गुरु की भूमिका में आ गई थी और तुरंत त्याग करके वृंदावन के लिए प्रस्थान किए और मन में भगवान को हमेशा बसाए रहे, कीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर जाने लगे। लेकिन उनका वैराग्य अभी पुष्ट नहीं हुआ था। जैसे वैराग्य हो जाता है लेकिन कुछ समय के बाद हो जाता, वैराग्य बिल्कुल पुष्ट नहीं था। वैराग्य की भावना आ गई थी। वृंदावन में भजन करते जाने लगे। जाते जाते वृंदावन के रास्ते में कई महीनों बीत गए थे भगवान के प्रति, लेकिन आसक्ति एक दिन फिर अचानक आ गई। बिलमंगल के संस्कार जल्दी नहीं जाता है ना, तो एक दिन रास्ते में जा रहे थे, कुएं पर स्त्रियां जल भर रही थीं। साधु महात्मा लोग कमंडल लेकर कुएं पर जल लेने जाते हैं ना, तो एक स्त्री के रूप रसिक थे ही, चिंतामणि के रूप रसिक थे, फिर रूप के प्रति उनकी आसक्ति हो गई। एक स्त्री के पीछे पीछे चलने लगे तो पानी भरकर मटका लेकर स्त्री घर पहुंची तो उसके घर पहुंच गए बिलमंगल। ने अपने पति से कहा कि ये साधु जो है मेरे पीछे लगा है। उसका पति बहुत सद गृहस्थ था, अतिथि देवो भव, अरे कोई साधु आए हैं हमारे घर में तो उनकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन पत्नी ने कहा कि नहीं, इसका विचार गलत है। पति ने कहा जो भी हो, हमारे दरवाजा पर तो इसका सेवा करना चाहिए, इसकी इच्छा जो हो पूरी करनी चाहिए। ऐसे सद गृहस्थ के सेवा भाव को देखकर बिलमंगल पानी पानी हो गए, क्योंकि जो आसक्ति का मैंने त्याग किया था वो आसक्ति फिर मन में आ गई। बार बार आसक्ति आने का भय रहता है। ऐसा नहीं कि हम लाल कपड़ा पहन ले तब नहीं ये होगा, नहीं, कभी भी गिर सकते हैं। सावधानी घटी दुर्घटना घटी बोलते हैं ना लोग। तो स्त्री का पति बड़ा अच्छा था, कहा गृहस्थ धर्म जानता था, कहा कि उस महात्मा बिलमंगल का अगर इच्छा है तो तुम उसके पास जाओ श्रृंगार करके। स्त्री ने अपने पति का आदेश लेकर गई। बिलमंगल का हृदय हो गया कि वो बिलमंगल अपने हृदय में सोचने कि मैं कैसा विरक्त हूँ। स्त्री के नतमस्तक का कि दो सुई मेरे लिए दे दो, जो कपड़ा सीने वाला होता है ना, सुई सुई बोलते हैं ना, जो कपड़ा को गांव में लोग धागा से सीते हैं सुई में डाल करके। तो स्त्री कहा कि दो सुई मुझे लाकर दे दो। स्त्री से कुछ साधु को कपड़ा उपड़ा सीना होता है, गुदड़ी, पहले साधु गुदड़ी खुद सीते थे धागा, तो उसी स्त्री ने दो सुई दिया और बिलमंगल दोनों सुई लेकर अपने आंख में डाल लिए। फिर फून के फवारे आ गए। फिर पति पत्नी देखकर ये हो गए। बिलमंगल कहे कि जिस आसक्ति का मैंने त्याग किया था वह आसक्ति पुनः आ गई। आंख बहुत, ये दृष्टि जो है, दृष्टि में अगर दोष आ जाए तो आदमी का पतन हो जाता है। यहाँ गांधी जी की लग बोलते हैं तीन बंदर थे, एक आंख को बंद किया था, एक मुंह बंद किया था, एक कान को बंद किया था। देखने से, सुनने से, चिंतन करने से आसक्ति आ जाती है। तो बिलमंगल दोनों आंख को फोड़ लिए, बंधा हो गए। इस तरह से पुनः अपनी चेतना को कृष्ण में अंतर्मुख कर लिए और अपने भूल पर प्रायश्चित करने लगे दोनों आंख फोड़ करके। तो कहने का अभिप्राय है कि आसक्ति को तोड़ना इतना आसान नहीं है। बिलमंगल जैसे लोग आज थोड़े हैं कोई आंख फोड़ने वाला, बल्कि और आंख हम बनवा लेते हैं। और वो तो अपना आंख फोड़ लिए, लेकिन हम लोग सोचते हैं हमारा आंख अभी देखते रहूं, चलचित्र है, टीवी है, वो देखते रहूं, तो इतना आसान नहीं। लेकिन जो इसको त्याग कर देता है वो भगवान को वश में कर लेता है। अजीत को भी जीत लेता है, जो संसारिक खास करके पारिवारिक आसक्ति को जो त्याग देता है वो वास्तव में भगवान को जीत लेता है। लेकिन संस्कार जो जीव के ऊपर अनादि काल से संस्कार है संसार को भोगने के लिए, वो संस्कार कभी कभी उभर जाता है। बड़े बड़े त्यागियों को, मुनियों को भी बीच बीच में कभी कभी ऐसी आसक्तियां आ जाती हैं। तो एक कथाकार कह रहे थे कि एक व्यक्ति महात्मा था, आश्रम बनाकर रहता था जंगल में, बड़े सिद्ध महात्मा थे, जंगल में भजन करते थे। वहां प्रतिदिन एक कुतिया आती थी आश्रम में, कुछ जूठा या कुछ उच्छिष्ट खाने के लिए। वो कुतिया बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्बल थी और उसके शरीर में बहुत कुष्ठ हो गए थे। कुत्ते कुतियों को होता है ना, कुछ कुष्ठ हो जाता है। लेकिन प्रतिदिन आश्रम में आकर के कुछ न कुछ साधु दे देते थे, खाते थे। तो साधु को दया आ गई तो कुतिया को सुंदर एक लड़की बना दिए अपने तपोबल से। कुतियों क्या किए, एक सुंदर लड़की बना दिए आश्रम में, आश्रम में रहने लगी, सेवा करने लगी झाड़ू पोतक। एक दिन वहां एक राजा आए आश्रम में, ये साधुओं के बाद राजा लोग भी आते हैं। तो देखिए कि बहुत सुंदर स्त्री है, कन्या है। तो उनको ये कि आश्रम में, पहले आश्रम में स्त्रियां नहीं होती थीं, आश्रम जंगल में होता था, स्त्रियों का वहां कम प्रवेश होता था। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आश्रम में, विरक्त महात्मा के आश्रम में एक स्त्री कन्या है बहुत सुंदर। तो पूछे यहाँ कन्या क्यों है। वो महात्मा ज्यादा विश्लेषण नहीं किए, बोले तुम्हें चाहिए तो ले जाओ। तो राजा बहुत खुश हुए, ले गए अपने हाथ, उसके साथ संबंध बनाकर रहने लगे। रहते थे तो प्रायः रात में लोग घी का या तेल का दीपक लोग जलाकर रखते हैं, पूरा अंधेरे में लोग नहीं रहते हैं। कहा गया कि कुछ दीपक जलना चाहिए रात में भी, जैसे लोग छोटा जीरो पावर का लाइट जलाते हैं, पूरा अंधेरा में नहीं सोना चाहिए। पहले के लोग भी घी का दीपक जलाकर थोड़ा लैंप कम करके जलने देते थे। तो जब राजा सो जाते थे तो वो ज्योती वो दीपक को बुझाकर घी को पी जाती थी, चाट चाट करके, जैसे कुतिया चाट जाती है ना, जो दीपक गांव में लोग दीपावली में जलाते हैं तो उसमें तेल या घी होता तो कुतिया कर चाट जाती है, तेल पी जाती है। तो उसका संस्कार था कुतिया का, वो जैसे दीपक, राजा सो जाते थे दीपक बुझाकर वो घी को चाट कर पी जाती थी, प्रतिदिन ऐसा होता था। तो राजा सोचे कि दीपक क्यों बुझ जाता है, कई दिन हो गए दीपक बुझ जाता था। एक दिन राजा सोए नहीं, ऐसे जगे रहे देखने के लिए, भाई बात क्या है, दीपक का घी भी खत्म हो जाता है, इतना दीपक तो पूरा रात्रि जलता था। तो एक दिन देखे जगे कि वो लड़की जा करके जिस जो आश्रम से ले आए थे वो दियो बुझाकर चाट रही है, कुतिया की तरह चाट चाट करके पी रही है। दूसरे दिन आश्रम में उस स्त्री को लेकर मुनि के पास गए कि इसको रख लीजिए। मुझे नहीं चाहिए तो पूरा दीपक चाट कर पी जाती है, कुतिया की तरह तो दीपक का घी ही चाट कर पी जाती है। तो महात्मा कहे कि उस समय मैं रहस्य नहीं बताया था क्योंकि तुम आसक्त हो गया था देखकर, उसके रूप सौंदर्य पर तुम आसक्त, इसीलिए मैं अब इसका रहस्य बता रहा हूं। तब तपस्वी महात्मा ने कहा कि ये कुतिया ही थी, कुतिया से इसको मैंने स्त्री बनाया था, एक कन्या बनाया था, तो उसका संस्कार अभी वही है, वो कुतिया का संस्कार जो है। तो जीव का अनादि काल से अनादि जुनियों में भ्रमण करके आता है तो उसकी आसक्ति जल्दी नहीं जाती है। जैसे कुतिया से उसको सुंदरी स्त्री बना दिए थे लेकिन आसक्ति रह गई थी चाटने के लिए, चाट चाट कर पी जाती थी कि। तो हम अनादि काल से अनंत जुनियों में, अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण करते आए हैं तो आसक्ति का त्याग करना इतना आसान नहीं है, कुछ चीजें रह जाती हैं। बहुत प्रयास के बाद तब धीरे धीरे उसका सुधार होता है। तो ऐसी आसक्ति को त्याग करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर कोई कर देता है तो वही सबसे बड़ा योद्धा है, भगवान को भी जीत लेता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न का समय तो नहीं है, विलंब हो गया है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।